नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और जनसांख्यिकी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही। प्रदेश स्थित ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की। और देहरादून में आगामी 12 जनवरी से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। 6 दिवसीय महोत्सव का विषय वर्ष 2047 तक विकसित भारत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के मलिथा गांव में आयोजित 5 दिवसीय औद्योगिक व कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वीर माधो सिंह भंडारी की स्मृति में क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें मलिथा चौराहे का नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखने, स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, सड़क विस्तार और मंदिर सौंदर्यीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता और सख्त भू कानून के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। श्री धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और जनसांख्यिकी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
प्रदेश में सुख शांति सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगारोधी कानून बनाया है। लैंड जियाद और थूक जियाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा।
इस कार्यक्रम में विभाग स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक झांकियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहेंगे। प्रत्येक माह थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी वर्गों के मतदाताओं को कार्यक्रम से जोड़ने को ध्यान में रखकर थीम कार्यक्रम बनाए गए हैं। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य हर नागरिक को अपने मताधिकार महत्व को समझना है और उसका उपयोग करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इन थीम के माध्यम से साल भर जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये पहल न केवल मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होगी बल्कि समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में भी योगदान देगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी को तिथि नियत की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश स्थित ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और उनके नियमित निगरानी के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस दिशा में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करने के लिए USDMA समन्वय की भूमिका निभाएगा। देहरादून में आयोजित केंद्रीय संस्थाओं के वैज्ञानिकों के साथ आयोजित बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 5 को ए श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि बीते साल एक दल ने चमोली जिले के धौली गंगा बेसिन स्थित वसुधारा झील का सर्वे किया। श्री सुमन ने बताया कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित श्रेणी ए की शेष 4 झीलों का सर्वे 2025 में करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आगामी 12 जनवरी से राजधानी देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजित होगा। सम्मेलन में 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी प्रतिभाग करेंगे। अब तक 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया। सम्मेलन में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, उद्यान और जड़ी बूटी से जुड़ी संभावनाओं पर 4 अलग अलग सत्रों में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि सम्मेलन का उद्देश्य देश विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों का विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभवों का लाभ उठाकर प्रदेश और उनकी आर्थिकी को और अधिक मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी 13 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ महापर्व के लिए राजधानी देहरादून में फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित रेल में पंजीकरण शुरू हो गया है। इस रेल में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। मुरादाबाद मंडल के वाणिज्य अधिकारी अभिषेक कुमार के अनुसार जनवरी और फरवरी में दून से फाफामऊ तक ये रेल 6 फेरे लेगी। ये रेल देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 फरवरी को सुबह 8:10 पर रवाना होकर नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली होते हुए रात 11:30 फाफामऊ पहुंचेगी। वहीं फाफामऊ रेलवे स्टेशन से 19, 22, 25 जनवरी और 10, 17, 24 जनवरी को सुबह 6:30 वापसी करेगी और रात्रि 9:30 देहरादून पहुंचेगी। वहीं नैनीताल जिले के लालकुआ और कर्नाटक के बंगलुरु के बीच रेलवे के एक विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन करने जा रहा है। लालकुआ बंगलुरु लालकुआ एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन आगामी 11 जनवरी से प्रत्येक शनिवार को लालकुआ से किया जाएगा। अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। देहरादून में आयोजित होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ लिया है। दैनिक जागरण समाचार पर लिखता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 17 देशों से जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के लिए अब तक करा चुके हैं पंजीकरण। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार। इस खबर को प्रमुखता से देते हुए अमर उजाला ने लिखा है कि जन सुझावों के लिए वेबसाइट पर अपलोड होगा प्रस्ताव, मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा, युवाओं से भी होगा संवाद। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव 24-25 फरवरी को। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, 674 सहकारी समितियों के चुनाव पहले चरण में होंगे और शेष 1000 समितियों के चुनाव की प्रक्रिया बाद में होगी। देहरादून के रायपुर में अवैध गैस गोदाम सीज होने की खबर पर राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र ने लिखा है, लीज समाप्त होने पर भी चल रहे गैस गोदाम पर डीएम की अधिकारियों को फटकार, 3 दिन में अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर होगा लाइसेंस निरस्त। राज्य के सभी ग्लेशियर झीलों का होगा व्यापक सर्वे। इस खबर पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है, वार्ड इंस्टीट्यूट समेत देश के कई वैज्ञानिक संस्थान एक साथ मिलकर करेंगे अध्ययन। एक अन्य खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है, राज्य के सीमावर्ती वाइब्रेंट विलेज के ग्रामीणों को ITBP टेली मेडिसिन सुविधा मुहैया कराएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और जनसांख्यिकी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही। प्रदेश स्थित ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की और देहरादून में आगामी 12 जनवरी से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।